इस्लाम का एटीट्यूड जो है औरतों की तरफ वो बहुत ही डिरोगेटरी है। उसके आगे मैं
अच्छा
तीन मिसालें देती हूँ,
जी।
वैसे तो खैर बहुत सारी हैं। सर पहली मिसाल ये है कि सूरह आल इमरान में जहाँ पे जिक्र आता है मरहूबात नफ्स का,
जी
वहाँ पे अल्लाह ताला ने जानवरों के साथ, सोने चांदी के जेवरात के साथ औरतों
जी
का जिक्र किया हुआ है,
जी
यानी अल्लाह की नज़र में हम सिर्फ एक कमोडिटी हैं। दूसरी सर एग्जाम्पल ये है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो, यानी कि बीवी बहुत नाफरमान हो
जी
और शोहर तलाक ना देना चाहे, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में वो उसके ऊपर कोई ना कोई फिजिकल पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट
जी
कर सकता है।
जी
ऑन द अदर हैंड सर, अगर मर्द इस तरह का है कि वो अपने हकूक पूरे नहीं कर रहा या
जी
वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो
जी
औरत के पास सिवाय खुला लेने के या सब्र करने के और कोई लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है। यानी कि हम क्यों नहीं मार सकते अपने हस्बैंड को अगर वो हमको मार सकते हैं तो। और सर फाइनली ये कि इन सारी मुसीबतों से गुजर के जब हम लोग आखिर में अल्लाह के पास जाएंगे,
जी
तो अपेरेंटली क्यामत में जब हिसाब होगा तो मर्दों को जन्नत में बाकी पैकेज तो हमारे जैसा मिलेगा, लेकिन उनको एक एडेड एडवांटेज ये होगी कि उनको हूरे में मिलेंगी। हमें क्या मिलेगा? हमें जिंदगी में हम गुजार देते हैं पूरी जिंदगी एक मर्द के साथ, और मरने के बाद भी अपेरेंटली वी विल एंड अप विद द सेम गाय। सो सर मेरे ख्याल में से ये बहुत ही अनफेयर है।
देखिए, बात यह कि ये चीज़ को देखने का जाविया नज़र है। वहाँ पर वो चीज़ें बयान हुई हैं जो इंसान को लुभा लेती हैं, इंसान के नफ्स पर असरअंदाज होती हैं, इंसान के लिए बड़ी महबूब हो जाती हैं। तो महबूब चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, यानी वहाँ ये नहीं है कि किसी दुकान के अंदर पड़ी हुई कमोडिटीज़ ज़ेर बहस है या किसी आपकी जायदाद का जिक्र किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इंसान को क्या चीज़ें मरगूब होती हैं, किन चीज़ों की तरफ उसकी दिलचस्पी होती है। तो औरत का मामला ये है कि वो खुदा की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, उसको अल्लाह ताला ने बड़ी गैर मामूली कशिश अता फरमाई है, इस वजह से उसका जिक्र किया गया है कि इंसानों के लिए ये कशिश बाज़ औक़ात मज़िल्ला एक कदम बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से
यानी क्या
कुरान
आप,
मजीद,
आपने मुश्किल लफ्ज़ एक, अब मैं चाहता हूँ
यानी ये वो चीज़
सुनने
है कि
वालों के लिए
जिसमें इसका इम्कान होता है कि इंसान आला अखलाकी हदूद से तजावज़ कर जाए।
ठोकर खा जाए वहाँ।
ये चीज़ दौलत में भी है, ये चीज़ इल्म में भी है, ये चीज़ इक्तदार में भी है, ये चीज़ हुस्न में भी है। यानी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ये सब किसी ना किसी दर्जे में इंसान को अपने दाम में ले आती हैं। और ये अपनी जगह पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको आप मजम्मत की निगाह से देखें, ये खुदा की बड़ी अजीम नेमतें हैं। देखिए, कुरान मजीद तो दौलत को भी खैर कहता है, इल्म को भी बड़ी नेमत करार देता है। यानी दौलत के लिए जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फजल और खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये दर्जा गिराना है या बढ़ा देना है? सरमाया है, दौलत है, दुनिया के अंदर की नेमतें हैं, उन नेमतों में औरत भी एक बड़ी नेमत है। तो नेमतों के ज़ैल में जिक्र हुआ है, ना कि उसको अशिया की जगह पर ले आया गया है। वो चीज़ें जो इंसान के लिए मोहब्बत का ज़रिया बनती हैं, रगबत का ज़रिया बनती हैं, जो उसकी ख्वाहिशात का हदफ बन जाती हैं, जिनका वो असीर होकर रह जाता है, जिनके लिए सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाता है, ये औरत की शख्सियत को बड़ा गैर मामूली खराज तहसीन है। उसके हुस्न, उसके जमाल, उसकी नुदरत, इसको बयान कर रहा है।
अगर उनका ख्याल ये है कि गालिबन इस्लाम के तालीमात से मालूम होता है कि इस्लाम नहीं रखता उस दर्जे में औरत को जैसे मर्द को रखा गया, और उसकी एक मिसाल उन्होंने ये भी दी कि औरत को मारने का हक मर्द को दिया गया बतौर शौहर के, तो ये तो जाहिर करता है कि ये बात सही है।
फिर देखिए, फिर एक गलती हो रही है, और वो गलती हमारे यहाँ दौरे जदीद में बहुत लोग करते हैं। वो औरत और मर्द का तकाबुल करना शुरू कर देते हैं, जबकि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए, मिसाल के तौर पर माँ है, माँ भी औरत है। माँ अपने बेटे को तादीब कर सकती है, तंबीह कर सकती है, उसके कान खींच सकती है। हमारी सोसाइटी में, हमारी माशरत में, माँ मेरी उम्र में भी अगर किसी बच्चे को डांट दे मिसाल के तौर पर, या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें वो कुछ तादीब करना चाहे थप्पड़ी मार दे, तो इसको बायस सादत समझा जाता है। तो ये औरत और मर्द का तकाबुल है ही नहीं है, ये दरहकीकत रिश्ते का मसला है। हमारे यहाँ मियाँ और बीवी के रिश्ते को मौजूदा तमद्दुन में वो हैसियत नहीं दी जा रही। देखिए, इस्लाम में सूरत हाल ये है कि तीन चीज़ों को बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है। एक, हिफ्ज़ फ़रूज को, यानी इंसानों को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी, ये हमारी तहजीब के बुनियादी अनासर हैं। दूसरे ये कि हिफ्ज़ मरातिब, जो रिश्ते कायम किए गए हैं, यहाँ मसला औरत और मर्द का नहीं है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि बैन ही वो हकूक जो बाप को हासिल है अपनी औलाद के ऊपर, वो माँ को भी हासिल है, यहाँ तक कि माँ को उससे भी तीन दर्जे बढ़कर वो हकूक हासिल है। तो अगर मामला औरत और मर्द के तकाबुल का होता तो फिर माँ को भी हक हासिल नहीं होना चाहिए था। तो रिश्ता असल चीज़ है, वो रिश्ते जो एहतराम के रिश्ते हैं, जिनको एक दर्जा बरतरी या फजीलत के मुकाम पर रखा गया है। उसके वजूह व असबाब क्या हैं? वो तमद्दुन की ये ज़रूरत है कि इंसान को ख़ानदान चाहिए। ख़ानदान एक इदारे के तौर पर वजूद में आता है, इसमें हिफ्ज़ मरातिब के बगैर कोई इदारा नहीं चलाया जा सकता। आप एक मामूली दर्जे की कंपनी कायम करते हैं, ممکن ہے اس میں سارے بزرگ لوگ ہوں جو ملازمت کر رہے ہوں اور اس کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ ممکن ہے کہ نوجوان آدمی ہو, لیکن جب وہ اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ باس کی جگہ پر ہوتا ہے. ملک کے سربراہ کا ہم انتخاب کرتے ہیں, ایک ریاست کا ادارہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر بڑے بڑے علماء, فضلاء, سائنسدان, حکماء موجود ہوں اور ایک معمولی درجے کا آدمی سربراہ ہو, لیکن اس کے لیے کچھ حقوق آپ قائم کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کو قائم کرنے کے لیے میاں اور بیوی کے رشتے کو قرآن مجید برابری کا رشتہ نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح اولاد اور والدین کے مابین ایک درجے احترام کا تعلق قائم رہنا چاہیے, اسی طرح میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی یہ تعلق قائم رہنا چاہیے. اس کا کوئی تعلق مرد و عورت سے نہیں ہے, یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, اور میاں اور بیوی کے رشتے میں اگر یہ تعلق قائم نہ کیا جائے تو پھر نہ گھر وجود میں آ سکتا ہے, نہ اولاد کو ماں باپ کی حقیقی شفقت میسر آ سکتی ہے. پھر آپ کو یہی قانون بنانا پڑے گا کہ لوگ 2-4 سال اکٹھے گزار لیں اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائیں. یہ بات کہ ایک جوانی کے زمانے میں رفاقت قائم ہو اور بڑھاپے تک ساتھ دے اور پھر اس کے بعد بھی اس رفاقت کی بنیاد کے اوپر رشتوں کا تقدس قائم رہے, یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے اگر پہلے مرحلے میں ایک عورت یہ قبول کرے کہ میں ایک آدمی کو شوہر کی حیثیت سے ایک درجہ برتری کی جگہ پہ رکھ کے, احترام کی جگہ پہ رکھ کے اس ادارے کے جو گھر کی صورت میں وجود میں آتا ہے سربراہ کے طور پر مان رہی ہوں. اصل میں یہ بنیادی تصور ہے جس کو موجودہ زمانہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کے جو بدترین نتائج ہیں وہ خاندانی نظام کے ختم ہونے کی صورت میں مغرب میں نکلے ہیں اور یہاں بھی نکلے.
امام صاحب, اس سے مارنے کا حق قائم ہو جاتا ہے؟
یہ بات یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ جس وقت آپ نے ماں کو ایک برتری کے مقام پر رکھ دیا, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا سرکشی اختیار کرے, دیکھیے یہاں پر مرد ہے نا, بیٹا سرکشی اختیار کرے تو کیا والدین اس کی کچھ تادیب نہیں کر سکتے؟ بالکل اسی نوعیت کا رشتہ جب بیوی اور شوہر کے مابین قائم ہو گیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سرکشی پر اتر آئے, یعنی نکاح میں ہے اور نکاح میں ہوتے ہوئے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر رہی ہو, طلاق لے لینا, شوہر کو وہ شوہر کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے, سزا دینی ہوگی کوئی نہ کوئی, تادیب کرنی ہوگی. اس کو بھی دیکھیے قرآن مجید نے تو اس سزا اور تادیب کے عمل کو مؤخر کرایا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, سمجھاؤ, بجھاؤ, سوسائٹی کو اس میں ڈالو, افراد معاشرہ کی مدد لو, بزرگوں کی مدد لو. یہ سمجھانے بجھانے کا عمل بھی ناکام ہو گیا. اس کے بعد کہا ہے کہ ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو, ان کے ساتھ رفاقت کا تعلق ختم کر لو. یہ چیز بھی اگر اصلاح کا باعث نہیں بنی تو پھر تیسرے مرحلے میں جا کر یہ کہا کہ سزا دو. موجودہ زمانے میں اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اس میں حدود سے تجاوز ہوتا ہے تو اس مرحلے کو ہم عدالت کے سپرد کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. لیکن سرکشی اولاد کرے تو سزا اور تادیب کا کوئی قانون بنانا پڑے گا, اور سرکشی کسی ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ کریں تو ان کے لیے بھی سزا اور تادیب کا کوئی قانون بنانا پڑے گا. میاں اور بیوی کے رشتے کو اگر آپ ایک ادارہ مانتے ہیں اور اس کی سربراہی کا کوئی مقام دیتے ہیں تو پھر کچھ اور قانون ہوں گے, اور اگر برابری کی سطح پر رفاقت کا ایک تعلق ہے تو کچھ قوانین اور ہوں گے. تو یہ اصل میں عورت اور مرد کا مسئلہ ہی نہیں.